नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर विचार विमर्श के लिए संसद की 3 दिन की विशेष बैठक आज से शुरू होगी। वर्ष 2023 में पारित इस विधेयक को लागू करने के लिए सरकार 3 संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह विशेष बैठक संविधान में संशोधन करने के लिए बुलाई गई है ताकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू किया जा सके। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर सभी पार्टियों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी यह आश्वासन दिया कि महिला आरक्षण विधेयक संतुलित है और यह हर राज्य समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को ध्यान रखता है। भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी आर और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने दोनों सदनों के अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने और अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है, लेकिन विधेयक को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उस पर आशंका है। नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद श्री खड़गे ने दावा किया कि विधेयक राजनीति से प्रेरित है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जनगणना 2027 के पहले चरण का अभियान आज से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। यह अभियान 15 मई तक चलेगा, जिसके दौरान प्रशिक्षित गणनाकर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्र करेंगे। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। अन्य कैबिनेट मंत्रियों की सूची की घोषणा बाद में की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह और सामान्य प्रशासन सहित 29 विभाग रहेंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नागरकोइल में रोड शो किया। वहीं डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने धर्मपुरी में चुनाव प्रचार किया, जबकि उप मुख्यमंत्री उदय निधि स्टालिन वासुदेव नल्लूर में प्रचार अभियान में शामिल रहे। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर भाजपा चाय बागान श्रमिकों के कल्याण का पूरा ध्यान रखेगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में कहा कि भाजपा नेतृत्व आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बंगाल में वोट हासिल करने के लिए धन का दुरुपयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी संस्थान एमपीआईटी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और 3D प्रिंटिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सुधारों में स्थायी सदस्यता की 2-स्तरीय व्यवस्था बनाए जाने का विरोध किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी सीटों की एक नई श्रेणी बनाई जाएगी, जिन्हें मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की तरह वीटो अधिकार प्राप्त नहीं होगा। भारत ने इस पर कहा है कि ऐसा कदम वार्ताओं को जटिल बनाएगा और असमानता को बढ़ावा देगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स सत्र के अपने सबसे कम स्कोर 146 पर ऑल आउट हो गई। बेंगलुरु के जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।